नाम शांति। ग्रुप चार, अपने को सदा संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात जिनों का हर संकल्प हर सेकंड श्रेष्ठ हो, ऐसे श्रेष्ठ बने हो कि कभी साधारण कभी श्रेष्ठ है। कभी साधारण और श्रेष्ठ दोनों चलते हैं या सिर्फ श्रेष्ठ चलते हैं? क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चलता है? तो सदैव मैं ऊंचते ऊंची श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, यह स्मृति मर्ज रखो। देखो, जो आजकल के नामधारी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों से भी कौन सा कार्य कराते हैं? जहां कोई श्रेष्ठ कार्य होगा तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो यह आप लोगों के यादगार है ना, क्योंकि आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सदा श्रेष्ठ कार्य किया है, तभी अभी तक भी यादगार में ब्राह्मण श्रेष्ठ कार्य के निमित्त है। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कोई काम कर लेता है तो उसको कहते हैं यह ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठ सोचने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले। तो जैसा कुल होता है वैसे कुल के प्रमाण कर्तव्य होता है। अगर कोई श्रेष्ठ कुल वाला ऐसा वैसा काम करे तो उसको शर्मवाते हैं कि ये क्या करते हो। तो अपने आप से पूछो कि मैं ब्राह्मण ऊंचते ऊंच आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं? क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति श्रेष्ठ है तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। तो सदा यह श्रेष्ठ स्मृति रखो कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा हमें स्मृति दिला रहे हम कौन है। संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण बाबा कहते अनुभव करते हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात जिन्हों का हर संकल्प हर सेकंड श्रेष्ठ हो, ऐसे श्रेष्ठ हो कि कभी साधारण कभी श्रेष्ठ। अभी साधारण और दोनों श्रेष्ठ दोनों चलते हैं या सिर्फ श्रेष्ठ चलता है? तो सदैव मैं ऊंचते ऊंची श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, यह स्मृति मर्ज रखो। जो आजकल के नामधारी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों से भी कौन सा कार्य कराते हैं? संसार के जो ब्राह्मण हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं? श्रेष्ठ कार्य करते हैं। और क्या करते हैं? यज्ञ रचना, यज्ञ करना, कराना। और संसार में जो ब्राह्मण आत्माएं कहलाती है पंडित, यज्ञ करना कराना, पठन पाठन, पठन और पाठन दो चीजें, एक तो अध्ययन करना और दूसरों को अध्यापन, दूसरों को सुनाना, दूसरों को शिक्षा देना। तो पहला है पठन और दूसरा है पाठन, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। चार, और दान, दान लेना, प्रतिग्रह, देना और लेना दोनों कह सकते हैं, प्रतिग्रह जिसको कहते हैं। देते नहीं, वो लेना ही है, पाची है, मुख्य पांच कर्तव्य है। तो ऐसे पांच कर्तव्यों का गायन है ब्राह्मणों के। ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, ब्राह्मणों को विप्र कहा जाता है, ब्राह्मणों को द्विजोत्तम कहा जाता है, जो जिनका दूसरा जन्म है। यज्ञोपवित, पहनना और पहनाना, ये भी ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो संसार में जो भी श्रेष्ठ कार्य होते हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते हैं। कथा करना, उपनयन, सारे 16 प्रकार के जो भी संस्कार है वो ब्राह्मणों की उपस्थिति में होते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का गायन है। हाँ, जितने संस्कार है वो सारे संस्कार ब्राह्मण ही करते हैं। ब्राह्मण अर्थात वो जो ईश्वर ज्ञाता हो, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो केवल ब्राह्मण माँ बाप के घर में जन्म लिया है वो केवल नामधारी ब्राह्मण है, या फिर ऐसा भी कहा जाता है जो सप्त ऋषि है उनके जो वंशज है वो सारे ब्राह्मण कहलाने लगे, परंतु वास्तव में ब्राह्मण वो है जो ज्ञानी है। वास्तव में ब्राह्मण वो है जो अध्ययन करता है, वास्तव में ब्राह्मण वो है जिसे ईश्वर में विश्वास है। संसार की बातें है ये कि ब्राह्मण किसे कहा जाए। जो चतुर वर्ण है उसमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो धर्म की रक्षा करे, वैश्य जो व्यापारी है, और शूद्र जो कि श्रमिक वर्ग है। तो इन चारों वर्णों में ब्राह्मण जो वर्ण है बाद में ये धर्म जाति बन गई। पहले ये वर्ण था आर्यो, आर्यवर्त में आर्यो नहीं मनुस्मृति के अनुसार, बाद में वो धीरे धीरे जाति के रूप में रूपांतरण हो गया हिंदू धर्म के साथ। तो भावा कहते हैं कि जो नामधारी ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों से भी कौन सा कार्य कराते हैं, ब्राह्मणों के कर्तव्य श्रेष्ठतम कार्यों के लिए ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। जो भी 16 संस्कार है वो कौन करते हैं, ब्राह्मण ही करते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, कौन से हैं? 16 श्रृंगार नहीं करते ब्राह्मण 16 श्रृंगार तो रानियां करती है ब्राह्मण श्रृंगार नहीं, संस्कार। पहले तो जन्म से पहले 3 संस्कार, गर्भधारण संस्कार होता है एक, वो पहला। फिर एक संस्कार होता है उसमें कि जो गर्भ में नर बालक है उसको ईश्वर को समर्पित कर देना, वो दूसरा। तीसरा एक संस्कार होता है कि जिसमें गर्भिणी जो स्त्री है केश मुंडन, ये 3 संस्कार जन्म के पहले के मुंज स्त्री के, हाँ मुंज। और फिर जब जन्म होता है तो सबसे पहला है जन्मजात, चौथा। फिर उसके बाद में होता है नामकरण। फिर एक संस्कार ऐसा भी है जिसको कुछ संप्रेषण शायद कुछ तो कहते हैं, कि जिसमें बच्चे को बाहर लेके जाते हैं सूरज का मुंह दिखाने, सबसे पहला वो है एक संस्कार। उसके बाद अन्य प्राशन, अन्न खिलाया जाता है पहली बार, हाँ योगी बहुत टाइम के बाद। फिर एक चूड कर्ण होता है और कर्णवेद, ये जन ये कर्णवेद वो सारे संस्कार। उसके बाद में जब वो विद्यारंभ संस्कार, विद्या का आरंभ जहां से होता है वो एक संस्कार, उपनयन संस्कार। फिर वो नामकरण आ गया, वो पहले ही जन्मजात के बाद में नामकरण, और उसके बाद में बाहर ले जाना उपनयन संस्कार, उपनयन के बाद में वेदारंभ संस्कार, वेदों का अध्ययन जादू करना, फिर गोदान संस्कार, और फिर समावर्तन। समावर्तन अर्थात विद्याकाल पूर्ण हो गया, ये 5 इधर, और अंत में फिर लास्ट 2 विवाह और अंत्येष्टि अंतिम संस्कार। तो चालू होता है ये जितने संस्कार है शुरुआत से तो अंत तक सबके लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, श्रेष्ठतम संस्कार ऐसे कहा गया है इसे। विवाह की जगह उसको पाणिग्रह कहते हैं, वो ज्यादा अच्छा शब्द है, पाणिग्रह संस्कार। तो बाबा कहते हैं देखो जो आजकल के नामधारी ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों से भी कौन सा कार्य कराते हैं। जहाँ कोई श्रेष्ठ कार्य होगा तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मण जाकर ये संस्कार करते है, ब्राह्मण जानकर जाकर यज्ञ करते है। यज्ञ करना कराना, कुछ कुछ ब्राह्मण ज्योतिष विद्या में चले जाते हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तो उन्हें वहां पर ज्योतिष कहा जाता है। कुछ कुछ ब्राह्मण केवल कथा सुनाते हैं, उन्हें कथावाचक ब्राह्मण कहा जाता है। कुछ कुछ ब्राह्मण जो है वो राजप्रसाद में चले जाते हैं, उन्हें अमात्य मुख्य पद पर आसीन किया जाता है, जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं अमात्य बन जाते हैं। कुछ कुछ ब्राह्मण मंदिरों में चले जाते हैं, वहां पर वो पंडित या फिर पुजारी बन जाते हैं, क्या होते महंत। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों की भी बहुत सारी, बाबा भी कहते हैं ना पुष, क्या कहते हैं बाबा मुरलियों, पुष्करणा ब्राह्मण, सार सिद्ध ब्राह्मण। वैसे तो ब्राह्मणों की बहुत सारी जातियां है, उत्तर उत्तर और दक्षिण के अलग अलग ब्राह्मण। दक्षिण में वैष्णव ब्राह्मण, माधव ब्राह्मण, स्वार्थ स्वार्थ ब्राह्मण, ऊपर में बहुत सारे राजस्थान के ब्राह्मण अलग, कोई वाजपेयी, कोई अलग अलग इस तरह के ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी जाति है उनकी, असंख्य जाति है। दामा खाने वाले ब्राह्मण कोई धोखा देने वाले ब्राह्मण भी है आजकल तो, आजकल तो नामदारी है। ब्राह्मण तो ब्राह्मणों की संसार में कितनी वैरायटी है, हम भी ब्राह्मण है भाट ब्राह्मण बहुत सारे हैं, बहुत सारे असंख्य जातियां हैं ब्राह्मणों की, असंख्य जातियां हैं। तो श्रेष्ठ कार्य के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं, तो हम ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं? हम सबसे महान कर्तव्य करते हैं, मनुष्य से देवता बनाने के कर्तव्य। ब्रह्मा मुख वंशावली, वो भी जो ब्राह्मण है वो भी कहा जाता है ब्रह्मा से ही उत्पन्न है सारे। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के, ब्रह्मा का ये पुत्र वो पुत्र, वो पुत्र के चार पुत्र, चार के पांच, पांच के पांच, और फिर ऐसे करते 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 ब्राह्मण, ऐसे बताया। हाँ, तो वो सब ब्राह्मण ही है एक रीति से। तो यह आप लोगों के यादगार है कि जो कुछ कर रहे हैं संसार में, सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो हम भी कथा सुनाने वाले। कौन सी कथा सुनाते हैं हम? सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तिजरी की कथा, आत्मा के 84 जन्मों की कथा, 5000 साल की कथा। लॉन्ग लॉन्ग एगो एक समय था जब देवता इस धरती पर रहते थे, ऐसी कथा हम सुनाते हैं विश्व को, विश्व की आत्माओं को। तो यह सब आप लोगों के यादगार है ना, क्योंकि आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सदा श्रेष्ठ कार्य किया है। क्यों ये सब इनको मान दिया गया द्वापर से? क्योंकि हमने यहाँ पर सर्वोत्तम कार्य किया है, हम यहाँ पर द्विज बने, जीते जी यहाँ मरे हम, इसलिए उनको वहां द्विज या द्विजोत्तम कहा गया, विप्र कहा गया। उनका इतना मान होता था वहां पर, जो राजा है उनके चरणों में आकर झुक जाते थे, इतना उनका सम्मान होता था। ब्राह्मण की हत्या करना अर्थात सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप माना जाता था गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या। तभी अभी तक भी यादगार में ब्राह्मण श्रेष्ठ कार्य के निमित्त है। दूसरों को नया जन्म देना, यज्ञ पवित्र प्रेरणा, मतलब स्वयं पवित्र जो रहता है और दूसरों को पवित्र बनाता है, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। दूसरों को नाम, नामकरण संस्कार ब्राह्मण करते हैं, तो हम भी नामकरण करते हैं, नया नाम देते हैं ना लोगों को, वो नाम हटा के ब्राह्मण, बीके, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये नाम देने के कार्य है हमारे। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कोई काम कर लेता है तो उसको कहते हैं यह ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कार्य कर लेता है, अगर झूठ ही बोल लेता है, कल की मुरली में था ना, अगर कोई देश के साथ झूठ बोले तो गवर्नमेंट उसे कड़ा दंड देती है। झूठ, धूतीपना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, ये सारे जो ब्राह्मण है अगर इनमें से कुछ कोई भी काम करे तो ब्राह्मणों को कड़ा से कड़ा दंड है। वो महाभारत में दिखाते हैं ना, जब दोनों की परीक्षा ली जाती है किसे राजकुमार घोषित किया जाए, दुर्योधन और युधिष्ठिर, तो उनके सामने चार कैदी आते हैं, उसमें से चारों ने मिलकर किसी की हत्या कर दी होती है, उसमें से एक ब्राह्मण, एक वैश्य, एक क्षत्रिय, एक शूद्र, ये चार होते हैं। तो दुर्योधन से पूछते हैं क्या तुम्हारा न्याय है कहो, उसमें न्याय करने की क्या बात है, इन्होंने चारों ने मिलकर हत्या की है, इन सबको कड़े से कड़ा दंड दी जाए, इन सबकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि पाप एक ही है सबका। परंतु युधिष्ठिर जो होता है वो कहता है ऐसा नहीं है, जो शूद्र है उसका दंड सबसे कम होना चाहिए, हाँ बहुत कम, क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञानी है, तो उसने तो जो दंड किया है अज्ञान के वश किया है, उससे ज्यादा दंड होना चाहिए वैश्य का, वैश्य का, व्यापारी का, उससे ज्यादा दंड होना चाहिए क्षत्रिय का, और सबसे अधिक मृत्यु दंड देना चाहिए ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण संपूर्ण वेद ज्ञानी है, उसके पास संपूर्ण ज्ञान है। कितना ज्ञान होने के बाद और उसके लिए जो विधि विधान बनाए हुए हैं शास्त्रों ने, वो इतने ऊंचे हैं कि अगर उससे अगर ये पाप हो रहा है तो उसके लिए तो सबसे कड़ा दंड है। हाँ, तो बाबा कहते हैं अज्ञान में एक का एक गुना, और ब्राह्मण बनने के बाद ईश्वरीय मशीनरी है, एक का 100 गुना, पदम गुना भी कहा है एक मुरली में बाबा ने, पदम। तो ब्राह्मणों को जितना टाइम, जितना समय ब्राह्मण बनने के बाद के किए हुए पाप को भस्म करने को नहीं लगता है, उतना जितना लगता है उतना वो 84 के पापों को भस्म करने के लिए उतना समय नहीं लगता है। 84 जन्म में जो पाप किए है वो कम है, पर यहाँ ज्ञानी बनने के बाद, कल की मुरली में था ना, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बात मत पूछो, ऐसे ऐसे पाप करते हैं कि बात मत पूछो, बात ही मत पूछो। पूछो ही मत बस, अबोल रहो तो अच्छा है। वाणी को अपवित्र ना करो। तो वो जो पाप है जन्म जन्मांतर के, वो अज्ञान काल में किए गए, एक का एक गुना। यहाँ ज्ञान मिला उसके बाद जो विकर्म हुए हैं उनको ही भस्म करने में ज्यादा समय लगता है। इसके लिए होशियार, सावधान, केवल बाप के डायरेक्शन पर चलो। माया कहती है, बाप कहते हैं हियर नो इविल, और माया कहती है हियर नो बाबा की बातें। रावण बाप की मत पर चलने नहीं देती, बाप की मत पर मत चलो। तो ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठ सोचने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले। आज भी कहा मीठा बोलो, मीठा बनो, ज्ञान रत्न निकले तुम्हारे मुख से, तुम रूप बसंत हो। तो श्रेष्ठ बोलने वाले, श्रेष्ठ सोचने वाले, जिनका आनंद विचारों में है। दो प्रकार के आनंद, एक है दार्शनिक जो होते हैं वो विचारों में आनंद लेते हैं, देह में आनंद कम है उनका। दूसरी आत्मा है निकृष्ट, जिनका आनंद देह में है, खान पान में आसक्ति जिनकी है, काम का आनंद जिन्हें बहुत सुख देता है, ये देह के आनंद है, विषय आनंद, भोगानंद। दूसरे जो आनंद है वो वैचारिक आनंद है, श्रेष्ठ संकल्पों में आनंद, परमानंद की अनुभूति होती है वहां पर, रसानंद। तो इस प्रकार के श्रेष्ठ सोचना, महान संकल्पों में जिसको आनंद आए वो एक अलग प्रकार का आनंद है, जो इस देह से हमको ऊपर कर देता है। इसमें जरूरी नहीं कोई ब्राह्मण ही हो सके, ब्राह्मण ही होना चाहिए। संसार में ऐसे बहुत सारे दार्शनिक है, विचारक है, मनस्वी है, बहुत सारे मनीषी है, ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनका आनंद विचारों में था, देह में नहीं था, देह से कम आ सकती थी, जिनका आनंद प्रकृति में था। ऐसी आत्माएं जैसे कल मैं कह रहा था ना, जब शरीर छोड़ती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, और जिनका आनंद देह में है वो जब शरीर छोड़ती है तो अस्वस्थ हो जाती है, क्योंकि उनका आनंद छिन जाता है उनसे। और जैसे खान पान में बहुत आसक्ति है, वो जब शरीर छोड़ती है तो उसे फिर वो जो उसकी प्यास और भूख, उसका क्या, तो किसी और देह में प्रवेश करती है अपनी भूख मिटाने के लिए। जिसका आनंद चाय में यदि है तो उसको क्या कहे। तो श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ कार्य करना, परंतु श्रेष्ठ कार्य का आधार पहले श्रेष्ठ संकल्प है, सोच है। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा कर्म करना, ये तीनों जो है ना एक अलाइनमेंट में हो जाए, दे शुड कम इन वन अलाइनमेंट, थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स, जिसको कहते संकल्प, बोल और कर्म, एक सीध, एक लाइन में वाला अलाइनमेंट। अभी हम सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, कर कुछ तीसरा ही रहे, विषम थे, अलग अलग है, भेद है इन सब में, तीनों में। वो हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, माया पता ही नहीं पड़ने देती। कल मुरली में था, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। सोच महान है परंतु बोल आदतन बोल है, जिसकी आदत पड़ गई है, जो अज्ञान काल की आदत चल रही है। बोल अभी भी वही है, कर्म कुछ और ही है, कभी श्रेष्ठ है, कभी निकृष्ट है, कभी मध्यम है, सारी श्रीमत पता होने के बाद भी। तो जैसा कुल होता है वैसे कुल के प्रमाण कर्तव्य होता है। लोगों को अपने कुल का नशा होता है ना, राजपूतों को कितना नशा होता है, हम राजपूत है, उनको नशा रहता है हमारे वंशज कौन थे। अगर कोई श्रेष्ठ कुल वाला ऐसा वैसा कर्म करे तो उसको शर्मा आते हैं कि ये क्या करते हो। महान कुल की आत्मा कोई निकृष्ट कर्म कर दे तो उसको लोग कहते हैं, निंदा करते हैं उसकी, ये क्या कर दिया तुमने। तो अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, स्वयं से बातें करना, बाप से बातें करना और ज्ञान का चिंतन करना, ये तीन कार्य है। एक है खुद से बातें करना, एक है बाप से बातें करना, एक है ज्ञान का मनन चिंतन करना। तीन अलग अलग कार्य है। तो अपने आप से पूछो कि मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो कोई भी ऐसा कर्म कर कैसे सकते हैं। सो चेकिंग, कल की मुरली पूरी इससे ही भरी थी। चेकिंग करो, क्या चेकिंग करो, किसी देहधारी से लाभ तो नहीं है, किसी देहधारी में फंसे तो नहीं है। आज भी बोला साकार आकार, किसी को याद नहीं करना है, एक बाप को याद करना है, अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ करना है। आज कहा है बाबा, चलन देखो कैसी रही, झूठ तो नहीं बोलते, कितनी सारी चेकिंग की पॉइंट्स थी कल। किसी भी देहधारी को याद नहीं करो, बार 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 मुरलियों में आता है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ याद, रिमेम्बरेंस। श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ है तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ कर्म उसका परिणाम होगा अगर श्रेष्ठ स्मृति है तो। अगर स्मृति कमजोर है, केवल कर्म को श्रेष्ठ करने लगे तो कभी श्रेष्ठ होगा, कभी निकृष्ट होगा, कभी मध्यम होगा। तो सदा यह श्रेष्ठ स्मृति रखो कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। कितनी बार मुरलियों में आएगी, केवल इतना भी याद रखो कि हम संगम योगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण है तो अहो सौभाग्य। बहुत बार आया है मुरली में, बहुत बार, केवल इतना याद रखो कि मैं कौन। यह तो सदा याद रहता है, यह याद करना पड़ता है। कभी शरीर को याद करते हो कि मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, क्योंकि याद तब किया जाता है जब भूलते हैं। अगर कोई बात भूली नहीं तो याद करनी पड़ेगी। तो मैं ब्राह्मण आत्मा हूं यह भी स्वतः याद रहे, न कि करना पड़े। जैसे प्रोफेशन याद रहता है, जैसे ये कभी भूलता है कि मैं स्त्री नहीं पुरुष हूं, पुरुष नहीं स्त्री हूं, कभी ये भूलता है किसी को? नहीं भूलता है, निरंतर याद रहता है। देह निरंतर याद रहता है, उसका नाम निरंतर याद रहता है, वो जो व्यवसाय है वो निरंतर याद रहता है। कभी आधी रात को कोई जगाए और कहे तुम कौन, तो ऐसा कोई कहेगा कि मैं स्त्री हूं या पुरुष नहीं, ये कभी कंफ्यूजन नहीं है।
पता नहीं चले, पूछ लेना।
कभी प्रोफेशन के बारे में कोई व्यवसाय पूछे, डिपार्टमेंट कौन सा है पूछे, तो गलती से दूसरा डिपार्टमेंट बताएगा कोई? कभी नहीं। नाम गलती से किसी और का बता देगा? कभी नहीं। कितना सबकॉन्शियस में चला गया है, 48, वो भी याद रहेगा। वो नंबर याद रहेगा हॉस्पिटल का। परंतु ये याद रखना कि मैं संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आया हूँ। कल कहा था ना, अवतार हो, याद रखो इस मृत्यु लोक में मैं अवतार हूँ, तो निरंतर वो निराकारी लोक निज धाम निज स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो उपराम अवस्था रहेगी। तो मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ यह भी स्वतः याद रहे, नहीं कि करना पड़े। तो स्वतः और सदा याद रहे कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक ये स्वतः याद रहे, जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक ये स्वतः याद रहे। तो इस बात को एक बार पढ़ना, एक बार सुनना, एक बार लिखने से नहीं होगा। कोई भी बात को हमारे अंतर मन तक लेके जाना है तो योग की जो गहन स्थिति है, जबकि बाह्य मन पूर्ण जब शांत कर दिया जाता है तो ही बातें अंतर मन तक जाती है। कॉन्शियस माइंड जब पूरा शांत हो जाए तो ही सबकॉन्शियस तक जाती है। हम दिन भर इसको स्मरण करते हैं परंतु वो अंतर मन तक नहीं जा रही, अवचेतन मन तक नहीं पहुंच रही है। अवचेतन मन उसे स्वीकार किया है? सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, अंतर मन इसे रिजेक्ट कर देता है, कुछ और सोचता है। वो देखता है कि संसार में तो और भी महान आत्मा है, हम तो है नहीं। सुनना केवल पर्याप्त नहीं है, एकांत में बैठकर उसके ऊपर गहन चिंतन करना, या योग की स्थिति में कभी कभी ज्ञान का चिंतन करना। योग की श्रेष्ठतम स्थिति में अगर पांच स्वरूपों का अभ्यास करते हो, अभ्यास करते करते जब ब्राह्मण स्टेज तक पहुंचते हो, उस गहराई में, उस मौन में, उस एकांत में, उस निस्तब्ध निश्शब्द स्थिति में यह संकल्प लाना कि मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, ये सारा स्मरण करना, तो वो धीरे धीरे अंतर्मन उसे स्वीकार करेगा, नहीं तो अंतर्मन सीधा उसे रिजेक्ट कर देता है। आगे, अच्छा, महाराष्ट्र अथवा आंध्र वाले, अब कोई नई बात करके दिखाओ तभी तो कहेंगे कमाल किया। कोई नई इन्वेंशन करके, कोई नवीनता करके दिखाओ जो सब कहे कि यह तो हम ही करेंगे, हम भी करेंगे। कमाल उसको कहा जाता है, किसको? जो किसी ने किया नहीं हो और आप करके दिखाओ, यह है कमाल। तो जो सब कर रहे हैं वो करेंगे तो कमाल नहीं कहेंगे। ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे कम खर्च, कम समय और रिजल्ट 100 गुना से भी ज्यादा, कम समय में फिर में रिजल्ट 100 गुना निकालना, इसको कहा जाता है कमाल। समय कम परंतु रिजल्ट बहुत ज्यादा हो उससे। तो अगले वर्ष जब आएंगे तो नया कार्य करके ही आएंगे ना, कि फिर कहेंगे करेंगे करेंगे तो नहीं करेंगे ना, कहेंगे ना। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे, कमाल करना है। कमाल अर्थात ऐसा कार्य करना जो अब तक किसी ने नहीं किया। किस किस में? ज्ञान में ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवाओं में। ये बात तो सेवाओं के लिए है परंतु इसे ज्ञान की रीति से भी समझना है। ज्ञान में क्या नवीनता लाए, क्या ऐसा करे कि जिससे हमारा ज्ञान चिंतन बढ़ जाए। कल की मुरली में था ना, विचार सागर मंथन, मुरली की पॉइंट्स पर मंथन करना, एक एक पॉइंट निकालना। मुरली जो है उसमें सिर्फ खाली पॉइंट्स मिल रही है, उसी को 10 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें पढ़ के उसमें मुख्य मुख्य जो टॉपिक्स है वो निकालना, उनको अलग रखना और उनके ऊपर फिर चिंतन करना, फोकस उनके ऊपर किया जाए। चाहे वो कुछ भी पॉइंट हो सकती है, जैसे कल की मुरली में खाली मूर्ति पूजा था। मूर्ति पूजा क्या होती है, क्यों चालू हुई, कब चालू हुई, मूर्ति पूजक कौन है, मूर्ति भंजक कौन थे, मूर्ति पूजा का क्या अर्थ है, क्योंकि वो मुरली में आई है पॉइंट। तो हमारा अध्ययन मूर्ति पूजा पर हो ताकि बुद्धि सारा दिन भर जब खाली समय मिले तो यहाँ वहां न जाए। मुरली की जो टॉपिक्स है, भले ये टॉपिक चिंतन करने से ना ही हमारा बहुत ज्यादा योग लगने वाला, योग से ज्यादा संबंध नहीं है इसका, परंतु वो ज्ञान का चिंतन है, हमारी चिंतन की आदत बढ़ जाएगी। उसका अगर हम चिंतन करेंगे तो ज्ञान की जो दूसरी पॉइंट आएगी उसका भी हमारा चिंतन बढ़ जाएगा। हाँ, तो व्यर्थ आने की मार्जिन बहुत कम है उसमें। मुरली की खाली मुख्य मुख्य पॉइंट्स एक एक करके निकाल लो और उनको अलग कर दो वहां से, और फिर उसको अलग रख के फिर उसके ऊपर हमें सोचना है या उसके ऊपर चर्चा करना है, डिस्कशन करना है, तो हमारा चिंतन बढ़ेगा। तो एक तो ज्ञान में नवीनता अर्थात चिंतन में नवीनता, नए नए रीति से उसको देखना, ये सोचना। अगर ये ही कोई हमारे सामने साइंटिस्ट आ जाए तो ये पॉइंट मैं उसे कैसे समझाऊंगा। कल बाबा ने कहा ना, सारे दिन भर यही सोचते रहो कि दूसरों को कैसे समझाए, इसके ऊपर सोचते रहो। कोई हमारे सामने डॉक्टर आ जाए, कोई इंजीनियर आ जाए, कोई वकील आ जाए, तो वो इस पॉइंट को रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? कोई ब्रह्मचारी आ जाए, कोई प्रकांड पंडित वेदों का ज्ञानी शंकराचार्य आ जाए, अब उसको ये बात बतानी है कि भाई गीता का भगवान ये नहीं वो है तो कैसे समझे? ना ना, ऐसे नहीं होता है तो ये है चिंतन। जब तक हम हमारे चिंतन को श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, हमारी स्थिति ऊपर नहीं जाएगी। चाहे कितना भी बाबा के कमरे में बैठ के योग करो, कुछ भी करो, खाली कमरे में बैठकर योग करना वो कोई क्रिया तो है नहीं, तो निरंतर वो स्थिति है मन की। योग तो असली योग तो वहां से चालू होता है जब बाबा के कमरे से बाहर निकलते हो वहां जाना, शरीर को ले जाना और वहां शरीर को बिठाना, वो तो कोई और एक चित्र को देखते रहना, ऐसा तो भगवान ने कभी सिखाया नहीं। कभी मुरलियों में आया है बिंदी को सामने रख के बाप को याद किया जाता है क्या? साकार वाक्य है तो वो तो असली योग तो कर्म क्षेत्र है, जहाँ कर्म चालू हो रहा है वहां से पता पड़ता है क्या है। हाँ, वो धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र है, वही कुरुक्षेत्र है। तो ज्ञान में नवीनता, योग में भी नवीनता। वही योग 10 साल पहले सीखा था जो कमेंट्री, मैं आत्मा हूँ, वही चालू है अभी तक भी। सेंटरों पर जाओ तो वही कमेंट्री, कोई उसमें नवीनता ही नहीं लाई है। कैसे उसमें नवीनता लाए, क्या क्या उसमें नए प्रयोग किए जाए, क्या क्या विधि है? समान का अभ्यास का तो बहुत कम लोगों को पता है, कैसे समान के अभ्यास में भी योग किया जा सकता है? वो 5 स्वरूपों के अभ्यास में कैसे गहराई में जा सकते हैं? कैसे परम धाम में भी लंबा समय टिक सकते हैं? सतयुग में कैसे लंबा समय टिके? ये जो ब्राह्मण स्वरूप है उसमें क्या क्या करे? फरिश्ता स्वरूप में क्या क्या करे? योग में नवीनता, धारणाओं में नवीनता। धारणाएं तो पता है, नाम पता है, सब पता है, सुने भी बहुत सारी बातें, परंतु जैसे कल की मुरली में था झूठ, ये झूठ क्या होता है इसके ऊपर चिंतन। चोरी, चोरी क्या होती है इसके ऊपर चिंतन। चोरी के बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म रूप है। किसी का मोबाइल रखा है, हम देख रहे हैं उसके मैसेजेस देख रहे हैं, ये भी चोरी के रूप में आ जाता है। किसी का मेल, किसी का मैसेज, किसी की पर्स, कोई चीज पड़ी है उसका पढ़ना, किसी का खत, ये सब सूक्ष्म अति सूक्ष्म में आ जाता है। झूठ, झूठ को वाक छल कहा जाता है। झूठ के बारे में कल हम पढ़ रहे थे, झूठ के न जाने कितने प्रकार है, 30-40 प्रकार है खाली झूठ के, सफेद झूठ से लेके तो और बहुत सारे जो कभी हमने सोचे नहीं थे, बड़े से बड़े झूठ और छोटे से छोटे झूठ, प्रीतिकर अप्रीतिकर कठोर, अलग अलग प्रकार के। तो कहा एक झूठ को, तो इस तरह धारणाओं पर नवीनता, और लास्ट में सेवाओं में नवीनता। अलग अलग रीति से हम अपनी सेवाओं को, अपने आप को बिजी करें। हमारी जो सेवा है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें हम क्या नवीनता लाए, किस रीति से उसमें और आगे बढ़े, वो नवीनता। तो बाबा ये कमाल चाहते हैं कि जो आज तक किसने नहीं किया वो करके दिखाओ। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कमाल इसमें। और दूसरा आज क्या कहा, ब्राह्मण। तो सदैव स्मृति रहे कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, संगम योगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण हूँ।